शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण।
ओम शांति। आज की शुभेला में आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हो, मुबारक हो, मुबारक हो। परिवर्तन की शुभेला में सर्व आत्माओं के, सर्व देवात्माओं के, सर्व धर्म आत्माओं के आदि और अनादि पिता धरा पर अवतरित होते हैं। जिस समय वो धरा पर अवतरित होते हैं उसी का नाम शिवरात्रि है। शिवरात्रि अज्ञानता का, शिव रात्रि के समय आए तो वो कौन सी रात्रि थी? एक तरफ तो हम शिव की जब उपमा गाते हैं, महिमा गाते हैं, तो कल्याणकारी के रूप में, मंगलकारी के रूप में, क्योंकि संसार के जितने भी मंगलकारी कार्य होते हैं उसका मूल आधार शिव है। अब वो शिव परमात्मा का रात्रि से क्या संबंध है? रात्रि भारतीय दर्शन के अंदर रात्रि अज्ञानता का द्योतक है। रात्रि को निशिचर भी कहा जाता है। और आप देखेंगे संसार के अंदर जितने भी पाप कर्म होते हैं वो रात के समय ही होते हैं, अंधकार में होते हैं। और आज तो चारों ओर दृष्टि दोहरा करके देखे तो संसार के अंदर अज्ञानता का ही बोलबाला है। प्रत्येक मानव वैर, विरोध, वैमनस्य की भावनाओं से जकड़ा हुआ है और उसके साथ साथ चारों ओर भ्रष्टाचार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को श्रेष्ठाचार समझा जाता है आज के युग में, जब हर एक की वृत्ति पशु तुल्य हो जाती है। चित्त वृत्तियां में विकार काल चक्कर के होने के कारण यूं तो आत्मा भी शुद्ध और पवित्र है, परंतु जब वो इस धरा पर आती है, आते आते काल चक्कर में आते आते पांच विकारों के वशीभूत हो जाती है, तो उसकी चित्त वृत्तियां पशु समान हो जाती है। तभी उसे, उस पिता को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो वो पशुपतिनाथ, वो भोला भंडारी, जिनके नाम से ही काल और कंटक दूर होते हैं और जिनको हम बहुत बहुत प्यार से बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो वो कल्याणकारी पिता इस धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में जकड़ी हुई आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर प्रकाशित करते हैं और वो ज्ञान प्रकाश से आत्माओं के अंदर ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर करते हैं। तभी उन्हें अवडरदानी आशुतोष भी कहा जाता है। और जब हम सभी मनुष्यात्माएं अंधकार के वशीभूत होती है तब परमात्मा शिव, जिनके लिए गायन है कि वो ज्ञान का डमरू बजाते हैं, शिव का डमरू डमडम बोले और अगम निगम के भेद खोले, तो वो परमात्मा शिव आकर के अगम और निगम के भेद खोलता है। और साथ साथ हम आत्माओं को हमारे सारे आदि से अंत तक का ज्ञान देता है, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य अपने आप में सशक्त नहीं हो सकता। यूं तो हमारे भारत वर्ष के अंदर अनेकानेक प्रकार की भक्ति है, पूजा है, कर्म कांड है, परंतु फिर भी आप देखेंगे दिनों दिन अधोगति को व्यक्ति मानव प्राप्त होता जाता है, तब परमात्मा आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिसके कारण उन्हें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति कहा जाता है। कई इसको शिव विवाह के रूप में या शिव बोध के रूप में भी मनाते हैं। इस पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार हिरण और हिरणी कहीं या अपने गए हुए थे घूमने के लिए, तो एक शिकारी को बहुत भूख लगी हुई थी और वो शिकार करते करते उस स्थान पर पहुंच गया जहां हिरण और हिरणी का जोड़ा रह रहा था और घूम फिर रहा था। तो उसने उनको जाके कहा कि हे हिरणी, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुमको तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। परंतु वो हिरण और हिरणी बहुत देर से अपने परिवार से बिछड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा, देख शिकारी, तुझे अगर भूख लगी है तो हम तुम्हारी भूख का जरूर निवारण करेंगे, पर एक बात आपको मेरी हमारी माननी होगी। तो उन्होंने कहा, क्या? कहा कि हम अपने बच्चों से मिलकर के वापस इसी स्थान पर पहुंचते हैं। तो हिरण शिकारी के मन में थोड़ी दया आ गई और उसने कहा, भले, मैं फिर आपके इंतजार करता हूँ। तो कहते एक पेड़ पर वो चढ़ गया और उस पर वो सारी रात जागता रहा। और वो जब उधर गए हिरण और हिरणी, तो उन्होंने ये सारा समाचार बताया। तो जैसे ही उन्होंने समाचार बताया तो लोगों के, जो हिरण हिरणी का समाज था, उनके मन में भी ये ख्याल आ गया कि हम भी आपके साथ चलेंगे। बच्चे भी कहने लगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो सवेरे सूर्य उदय होने से पहले उसी स्थान पर पहुंचना था, तो उनका सारा समाज उसी स्थान पर पहुंचा और उधर जो शिकारी था, नींद ना आ जाए उसको, तो वो एक एक पत्ता उस पर डालता गया। उसको मालूम नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। तो जैसे ही पत्ता डालता गया, तो जैसे ही वो समाज वहाँ हिरण हिरणी का वहाँ परिवार पहुंचा, तो उन्होंने कहा, ए शिकारी, आओ, आप अभी हमारा शिकार करो। तो उसी तय कहते उस पिंडी में से शिव प्रगट हुए और उन्होंने कहा कि अब उसको, जैसे जैसे शिव प्रगट हुए तो उनको लगा कि अब मुझे जो पाना था वो पा लिया, अब मुझे ये नहीं करना है। इस तरह की बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं जो उसका वास्तविक रहस्य ना मालूम होने के कारण मनुष्य आज जिस तरह से शिवरात्रि को मनाना चाहिए उस तरह से नहीं मना करके कर्म कांड के रूप में। आप देखिए कितनी विडम्बना है कि शिव आज के दिन शिव पिंडी के ऊपर अक, दतूरा, बेर, बिलपत्री, जो बड़े ही कर्वे, खुदरे और अजीब प्रकार के चीजें हैं, उसको बेर चढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति का बर्थडे होगा, फूल देंगे, फल देंगे, कोई अच्छी सौगात देंगे, परंतु शिव की पिंडी पर आज भक्त जन ये पांच चीजें चढ़ाते हैं। पर वास्तव में देखा जाए, परमात्मा ने हमारे मैले, कुचैले, खुदरे संस्कारों की भेंट ली थी। अब वो भेंट तो ना देख करके आज का प्राणी उनके ऊपर ये पांचों चीजें चढ़ाता है। इसी प्रकार नेपाल में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पशुपतिनाथ की बहुत महिमा है, वहाँ भैंसे की बलि चढ़ाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शिव ने हमारी मोटी बुद्धि, जो हम सारा दिन देह अभिमान के अंदर पड़े रहते हैं, ईगो माइंड होकर के अनेक प्रकार के वैर विरोध के अंदर, अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़ों में पड़े रहते हैं, तो परमात्मा शिव ने आकर के इस प्रकार की बलि ली थी। परंतु आज वो मोटेपन की, उस देह अभिमान की बलि ना दे करके जाकर के भैंसे को पकड़ा। वास्तव में एक तरफ जब उनको कहते हैं हम कल्याणकारी है, तो वो कल्याणकारी पिता, वो स्वयं भू पिता, जब हम सभी मनुष्य आत्माएं इस विकारों के वशीभूत होती है, तब वो धरा पर अवतरित होते हैं। जो समय आप सबको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो समय आज चल रहा है और वो परमात्मा शिव हम सबसे एक ही बात कहते हैं कि बच्चे, तू ये जो देह अभिमान का काला जामा पहन रखा है, इस देह अभिमान को छोड़कर अपने आप को मान कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो जितनी ऊंच स्मृतियां हमारे अंदर जागृत रहती है, उतना ही हमारे अंदर सद्भाव और सद्भावनाएं भी पैदा होती है। तो परमात्मा शिव का हम सब बच्चों के प्रति यही आदेश और संदेश है कि बच्चों जागो जागो, समय के को पहचानो। समय भी हमें यही पुकार कर रहा है, भगवान भी हमसे यही पुकार कर रहा है कि सब प्रकार के अपने मत मतांतरों को भूल करके, मत भेदों को भूल करके, देह अभिमान को, ईगो माइंड को भूल करके, और जो मैं तू तू के जाल में फंसे हुए हैं और सबको ये रहता मैं बड़ा, तो उस सब को भूल करके अपने आप को आत्मनिश्चय जानो। क्योंकि आत्मा में इटसेल्फ जो परमात्मा के गुण है, परमात्मा को प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर कहा जाता है, तो हम उनकी संतान हैं और हम उन हमारे अंदर भी ये गुण होने चाहिए। परंतु ये गुण हमारे अंदर तभी आ सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, अपने स्वधर्म को जान जाएंगे, अपने स्वदेश को जान जाएंगे, अपने स्वकर्म को जान जाएंगे, अपने स्वलक्ष्य को जान जाएंगे। तो हमारा स्वरूप ये मोटा रूप नहीं है, वास्तव में मैं और आप एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। आत्मा अपने आप में आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। आत्मा में अथाह शक्तियां हैं, परंतु वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है और उसको जागृत करना है। तो वो जागृति हमारे अंदर परमात्मा ज्ञान का कलश, ज्ञान की अमृत धारा मिला करके हम सबको जागृति ला रहे हैं, और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने ये इतना बड़ा मेला लगाया और उसके अंदर सबको यही संदेश देने के लिए बताया कि हे आत्माओं, अभी समय वापस घर जाने का है। तो जब वापस घर जाना है तो जिस रूप से आए थे, जिस स्थिति से आए थे, उसी स्थिति से वापस हमें जाना है। तो वो तभी हो सकेगा जब हमें बार बार उठते बैठते ये शुद्ध समृद्धियाँ जागृत रहेगी। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग भी याद आता है कि एक माता को चार पुत्र थे। माता बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी विद्वान लेडी थी और उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई लायर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु चलते 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 बच्चों में अहम जागृत हो गया, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, तो एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे, एक दूसरे का अपमान करने लगे, एक दूसरे को कुछ नहीं तुच्छ समझ करके चलते रहे। माँ के पास ये आवाज पहुंची तो माँ ने सोचा कि मेरे इतने अच्छे बच्चे और आज कैसे परिवर्तन हो गए हैं, कैसे विकारों के वशीभूत हो गए हैं, तो मैं इनको चेंज करना चाहती हूँ। तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को कहा कि मेरा फलाने दिन बर्थडे है, आप आइए। तो माँ का बुलावा था तो सब बच्चे माँ के बर्थडे पर पहुंचे। तो माँ ने उनको अंदर आंतरिक चेंज लाने के लिए एक बहुत खिचड़ी बनाई और खिचड़ी के अंदर खूब सारा देसी घी डाल दिया और एक परात के अंदर डाल करके कहा चारों ही इसको खाएंगे। तो जब चारों ही बच्चे खाने लगे, परंतु अंदर वही विकार थे, वही स्वार्थ था, वही तृष्णा थी, वही अनेक प्रकार की तुच्छ वृत्तियां थी। तो चम्मच के साथ कोई अपनी तरफ घी को खेलता, कोई अपनी तरफ खेलता, कोई अपनी तरफ खेलता, तो माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो माँ ने कहा कि देखो, मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर मैं आप सबसे एक ही सौगात मांगती हूँ, वो ये मांगती हूँ कि तुम लोग आपस में ये वै विरोध वैमनस्य की भावनाओं को छोड़ करके सद्भाव और सद्भावनाओं को पैदा करिए। जब तक तुम्हारे अंदर सद्भाव और सद्भावनाएं नहीं आएगी, तब तक तुम प्रेम और एकता से जीवन को जी नहीं सकोगे। तो बच्चों ने कहा ठीक, हम आपकी बात को मानेंगे। इसी प्रकार से हम सर्व आत्माओं का पिता हम बच्चों से एक ही बात चाहता है कि इन सारी बातों को छोड़कर इस समय तुम अपनी असली स्मृतियों में, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहो, और उसके साथ साथ तुम एक पिता की संतान हो और विश्व एक परिवार है और तुम्हें आपस में बहुत मिलजुल करके प्रेम और एकता और शांति से रहना है। क्योंकि हम सबके जो निजी गुण है, निजी संपदा है वो है सत्य, प्रेम, एकता, दया और करुणा, अहिंसा। तो हम हिंसा मुक्त समाज तभी ला सकते हैं, स्वर्णिम संसार तभी ला सकते हैं जब इस प्रकार की भावनाओं को छोड़कर सद्भाव और सद्भावनाएं पैदा करें और असली समृद्धियों में रहकर एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, दिव्य गुणों से हम अपने आप को सुसज्जित कर सकते हैं। आज की भी वाणी के अंदर भगवान का हम बच्चों के प्रति यही संदेश और आदेश है कि अपना चेहरा और चलन को इतना उज्जवल, इतना पवित्र बना लो जो फरिश्ते के समान तुम्हारा जीवन हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज समय है परिवर्तन का, परिवर्तन कहा तो मैं आप सबको यही शुभ राय दूंगी, शुभकामना दूंगी कि शुभ 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 शिव शिव शिव, यही हमारे नबज की चाल होनी चाहिए, यही हमारे दिल की धड़कन होनी चाहिए। जब हमारे दिल की धड़कन और नबज की चाल जे शुभ शुभ की होगा तो हमारी जैसी समृद्धि होगी वैसा संसार का वातावरण फैल जाएगा। और हम सब ब्रह्मा कुमारी संस्था और पिताश्री ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की हम सब बच्चों के प्रति यही शुभकामना और शुभ भावना है कि जागो, जगाओ, मुस्कुराओ और मुस्कुराहट बांटते रहो। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी उससे कोई भी सहमत नहीं, विरोध भी प्रदर्शित किया आदि, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने सदा रेफर्मेटिव एक्शन लेने का प्लान सदा बनाया है। व्यक्ति का सुधार किया जाए और जितनी ग्लानिपूर्ण बातें समाज में हैं उसका कारण कोई और नहीं परंतु हम स्वयं हैं। और यदि मनुष्य में जागृति आती है, अपने कर्तव्यों का बोध होता है, अपनी जिम्मेवारी व्यक्ति समझता है, तो यही समाज जिसे हम कलयुग कहते हैं, नर्क कहते हैं, वह सतयुगी बन सकता है। और अभी हम इस कल्प की उस वेला पर हैं जिसे हम कहते हैं कलयुग की घोर अंधियारी रात, और परमात्मा ने हम आत्माओं को ये बताया है, रेवलेशन है कि कलयुग की अंधियारी रात के बाद निश्चित है कि सत्युग स्वर्णिम विश्व आना ही है। रात के बाद सदा दिन आता है, रात के बाद शाम नहीं आती। ऐसी धारणा और मान्यता के साथ हम सब ने ये प्लान किया कि भारत देश वह देश जो परमात्मा की अवतरण भूमि है, भारत वह देश है जो विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है, भारत वह देश है जिसने कदापि किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत वह देश है जहां पर सब धर्मों ने आकर के राज्य किया, भारत वो देश है जिसमें सहन शक्ति और समाना स्वमान में रहना हर भारतवासी की आन और शान है। ऐसा देश भारत पुनः अपने गुणों से अपनी उस उत्कृष्ट पदवी को प्राप्त हो सकता है, ऐसा हमारा विश्वास और निश्चय है। इसीलिए इतने सारे भाई बहन उस लक्ष्य की ओर अग्रसर दिनों दिन चढ़ती कला में होते जा रहे हैं। परमात्मा शिव ने हमें ये भी बताया कि देवताएं कोई और नहीं थे, मानुष से देवता की एक करत न लागी बात, हम मनुष्य आत्माएं ही अपने कर्मों से आसुरी बन जाती हैं और हम मनुष्य आत्माएं ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से दैवी बन जाती हैं। और जब मनुष्य परमात्मा के साथ अपने मन को लगाता है, मन मना भव होता है, तब परमात्मा सर्वशक्तिमान की जो शक्तियां हैं वो जीवन में आती भी हैं। हम सब कलयुगी दुनिया में कलयुगी ही हैं। कहा गया है, काजल की कोठरी में काहू ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागिए पे लागिए। काजल की कोठरी में कितना संभल करके भी आप चलेंगे, थोड़ी कालिक लग ही जाती है। अतः पांच विकारों से ग्रस्त जब हम आत्माएं होती हैं, तो परमात्मा पिता शिव आकर के यही एहसास कराते हैं कि वस्तुतः आप ये देह नहीं हैं। इस देह से कर्म करने वाली अनादि अविनाशी सत्ता आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की संतान होने के नाते अपने मूल गुणों में ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। लेकिन देह के साथ आइडेंटिफाई होने के कारण विकृतियां आई, और वो विकृतियां पांच विकारों के रूप से हम सबके जीवन में घर कर गई हैं। आज एक भी व्यक्ति सभागार में नहीं होगा जो ये कहे कि मैं पांच विकारों से मुक्त हूँ। एक भी नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे जीवन में आसुरी संपदा नहीं है। शास्त्रों में दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच द्वंद दिखाया है। तो इस ही विषय को लेकर अहिंसा परमो धर्म, हिंसा की वारदात मनुष्य के अपने विकारों के कारण से होती, जब जहां अकाल पड़ जाता है, चरित्र का अकाल है, नैतिकता का अकाल है, खुशी का अकाल है, ऐसे समय पर परमात्मा आकर जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, भागीरथ ने गंगा लाई, परमात्मा ज्ञान सागर अवतरित होकर हम आत्माओं को इन अकाल के पंजे से छुड़ाते हैं। और इस निमित्त हमने जो मेला लगाया उसमें आप पाएंगे कि हिंसा की परिभाषा दी गई है, वास्तव में हिंसा है क्या। दूसरा, देवताएं कदापि हिंसक नहीं थे, देवताएं सदा अहिंसक थे। हिंसात्मक व्यक्ति को हम असुर कहते हैं, अहिंसा वाले परमो धर्म वालों को हम देवता कहते हैं। साथ ही साथ आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, पर्यावरण पर हमारे थिंकिंग का क्या प्रभाव होता है, राजयोग के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने स्टॉल एक लगाया जिसमें ये बताया गया कि श्रीमद् भगवद् गीता हिंसा का शास्त्र नहीं है, और न ही कदापि परमात्मा ने हिंसा करने के लिए दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा किया। वास्तव में वो अहिंसक युद्ध है जो हर मनुष्य मन के अंदर चलता रहता है। वो स्टॉल भी बहुत रमणीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, कुंभ का मेला चल रहा था तो यहाँ पर हरिद्वार दर्शन जो बॉम्बे से बनकर के आया है मेला, वो हमने यहाँ पर लगाया कि केवल मात्र गंगा में स्नान करने से हम पावन नहीं हो जाते। स्नान किया और बाहर निकले और अगर कोई ऐसी अप्रिय चीज सामने आ गई, गाली गलौज शुरू हो गया, पावन तो हुए नहीं। वास्तव में पतित को पावन बनाने वाला परमात्मा है, और इस बात को हमने उजागर किया है कि वो ज्ञान गंगाएं हैं। ज्ञान अर्थात समझ, जिस आधार से हम पतित पने को भी समझते हैं और पतित से पावन कैसे बनना है उस विधि को भी सीखते हैं। इस प्रकार से इस मेले के अंदर जो 10 दिन तक लगाया गया, कई प्रकार की शुरुआत में हमें बातों का सामना करना पड़ा, आंधी तूफान आदि आदि बहुत प्रकार की, लेकिन प्रथम दिन से, जिस दिन से इसका उद्घाटन हुआ उस दिन से लेकर के आज दिन तक मैं सवेरे और शाम मेले में रही हूँ और मैं पा रही हूँ कि इस घड़ी तक दिल्ली निवासी यहाँ पर भर भर करके आ रहे हैं और इस बात का एहसास कर रहे हैं कि जब हम बदलेंगे जग बदलेगा।
हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हैं, निवेदन करती हूं कि आप अपने शुभ वचनों द्वारा आज के इस सभा को सुशोभित करें। भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी।
कुछ दिन पहले आदरणीय बहन आशा जी आई थी और मुझे आकर के सूचित किया कि उस दिन के लिए एक मेला हम आयोजित करने जा रहे हैं ब्रह्म कुमारियों की ओर से, और उसका समारोह शिवरात्रि के दिन होगा। मैं इस संगठन से परिचित हूं वर्षों से, स्वयं मैं सिंध का निवासी रहा हूं, कराची में मेरा जन्म हुआ और तब से लेकर के ब्रह्म कुमारियों की गतिविधियों से भली भांति परिचित हूं। माउंट आबू जाकर के भी उनका प्रमुख केंद्र, वहां पर भी जाने का अवसर मुझे मिला है, और इसीलिए मैं जानता हूं कि अगर कोई भारत का त्योहार विशेष रूप से ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित होता है तो वह शिवरात्रि का कार्यक्रम है। और आज मुझे बहुत खुशी है, मैं आनंदित हूं कि आपके बीच में यहां पर आकर के इस वातावरण का, जिस वातावरण में उद्देश्य है कि भारत के भविष्य को स्वर्णिम बनाना, और यहां पर जो सामने ही लिखा हुआ है वही उसका मार्ग मान करके ब्रह्म कुमारियां कार्य करती हैं कि पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, और इसीलिए जो भी संगठन, जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति जितनी मात्रा में पवित्रता का प्रसार कर सके उतनी मात्रा में ही वह भारत को, भारतीय समाज को उन्नत करेगा, उसको महान बनाएगा, कलयुग से सतयुग की ओर ले जाएगा। और मैं स्वयं इस कारण से मन में प्रसन्न रहता हूं कि कराची में जन्म के बाद से लेकर के, क्योंकि उन दिनों में भारत पर अंग्रेज का शासन था, हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारे देश के नेता अलग अलग ढंग से भारत को स्वतंत्र करने के लिए, स्वाधीन बनाने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते थे अपने अपने मार्ग से, जो भी उनको उचित लगा। गांधी जी को, पंडित जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र बाबू को, उनको लगा कि अहिंसा के माध्यम से हम काम करते करते भारत को आजाद करें, तो क्रांतिकारी थे जो क्रांति के माध्यम से करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कि जिन्होंने ये सोचा कि विदेश जाकर के और अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं उनसे मिलकर के किया जाए, तो उन्होंने उस ढंग से किया। अपने अपने ढंग से भारत की स्वाधीनता के लिए लोगों ने संघर्ष किया, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि उस काल में मैं जब विद्यार्थी था, स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मन में एक ही अभिलाषा होती थी कि यह भारत स्वतंत्र कैसे हो और भारत को स्वराज्य कैसे प्राप्त हो। लेकिन 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वराज्य प्राप्त हुआ, तो स्वराज्य के बाद से लेकर के जितना काल है मैंने राजनीति में बिताया, और इसीलिए देख करके दुख होता था कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, स्वराज्य हमें प्राप्त हो गया, हमारे अपने लोग वे भारत का शासन करने लगे, लेकिन स्वराज्य को हम सुराज्य में नहीं बदल सके, स्वशासन को हम सुशासन में नहीं बदल सके, और इसीलिए जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी प्रगति हो नहीं पाई। मैं मानता हूं उसका प्रमुख कारण है कि जितनी मात्रा में व्यक्ति के दिल में, व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के अपने जीवन में जितनी मात्रा में पवित्रता आनी चाहिए उतनी मात्रा में पवित्रता नहीं आई, और इसीलिए जो भी संगठन, जो भी संस्था इस बात के लिए प्रयत्न करता है कि व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में पवित्रता लाई जाए, मैं मानता हूं कि वो भारत की उन्नति का काम करता है। मैं मानता हूं कि वह देश को दुनिया के देशों में महान बनाने का कार्य करता है, और इसीलिए मैं सहज उसको समर्थन देता हूं। और जब भी कोई इस संगठन की बहन मुझे मिलने आती है, मैं उनकी बात आदर से सुनता हूं, समझता हूं, और अगर मुझे निमंत्रण ऐसा मिलता है तो मैं सहज स्वीकार करता हूं।
शुभ भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी, शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी, गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शुभता हमारा है, शुभता हमारा है, हो शुभता हमारा है, शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच राता राकेश मेहता जी भी आए हैं, आप दिल्ली और चंडीगढ़ के स्टेट इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, और साथ ही साथ कई वर्षों से राज्यों का भी अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही स्नेही और बहुत अनुभवी। आप अपने अनुभव युक्त विचार हमारे सामने रखेंगे।
ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रुक्मिणी, भ्राता बिजमोहन भाई, राजयोगिनी आशा बहन, राजयोगिनी शुक्ला बहन, रजनी बहन और भाइयों और बहनों, आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आज सबको बधाई देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत एक प्राचीन देश है जहां से आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व में फैला और ये अध्यात्म हमें वेदों से प्राप्त हुआ है और इन वेदों में प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ परमात्मा का ज्ञान भी पूरे विश्व को मिला है और अजर अमीर अवर अविनाशी आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान वेदों से मिला है और इनको फिर हम भगवद गीता में भी देखते हैं और भगवद गीता में एक ही भगवान का ज्ञान का वर्णन है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहा है कि उन्होंने कहा कि एकम सत विप्र बहुधा वतंती, मतलब भगवान एक हैं पर लोग उनको कई नाम से जानते हैं। अद्वैत मना एक भगवान की मान्यता और भारत में इसका बिलीफ है। ये भी मानते हैं कि हमारे भारत में बहुत देवताएं भी हुए, बहुत देवताएं भी हुए जिनके पास ऐसी क्वालिटीज जो भगवान के जैसी हों, परंतु वे अजर अमर अविनाशी नहीं हैं। ब्रह्मा कुमारीज ने ये राजयोग मेडिटेशन जो सिखाया है पॉइंट ऑफ लाइट पर, ये बहुत ही लाभदायक है और मुझे खासकर इससे बहुत लाभ हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये मानता था, मैं पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, अब रिटायर हो गया, और मैं ये मानता था कि इंस्टीट्यूशन को चलने के लिए शक्ति की बहुत जरूरत है और जितनी शक्ति से हम इंस्टीट्यूशन के रूल और रेगुलेशन को लागू करेंगे उतना ही प्रभाव सोसाइटी पे पड़ेगा और प्रशासन और अच्छा चलेगा। और उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि अगर आदेश का उल्लंघन होता था या पालन ठीक से नहीं होता था तो अहंकार बढ़ता था और गुस्सा बहुत आता था और हद तो इस तक पहुंच गई थी कि लोगों ने मेरे कमरे में आना ही बंद कर दिया था और लोगों को समस्या अगर होती तो बताते भी नहीं थे। इससे ये हुआ कि मुझे जानकारी भी नहीं होती थी कि हमारे प्रशासन में किस तरह की बाधाएं आ रही हैं जिसके आधार पे हमें फैसले लेने हैं और मुझे फिर ऐसा लगा कि प्रशासन में कोई चीज सुधर नहीं सकती और सब कलयुगी वातावरण है। और जब मैं माउंट आबू गया और वहां पे मैंने बहनों को सुना और आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ा तो एक चीज मेरे सामने आई, वो ये कि कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए लॉ की भी जरूरत होती है और लव की भी जरूरत होती है और अगर दोनों का बैलेंस ठीक से करके नहीं चलाया तो वो इंस्टीट्यूशन ठीक से नहीं चल सकता। तो राजयोग मेडिटेशन रोज करना जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये देखा कि मेरा दृष्टिकोण समस्या के सामने एकदम बदल रहा है। मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता था क्योंकि मैं उनको एक दूसरी दृष्टि से देखने लगा, मैं उनको एक आत्मिक शक्ति या आत्मिक स्थिति में देखने लगा कि वो भी एक आत्माएं हैं, उनके पास भी कोई डिफिकल्टीज आ रही होंगी कि वो कोई चीज का पालन नहीं कर सकते और मेरा जो उनके प्रति जो एटीट्यूड था वो बदल गया और गुस्सा कम हो गया और मैं बहुत शांत वृत्ति का हो गया। और मैंने ये देखा बाद में अगले 5, 6, 7, 8 साल में कि जब हम मीटिंग करते थे पहले अगर कोई लेट आता था उसको बाहर कर देता था गुस्सा होकर, पर मैंने फिर वचन लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसके करने से मुझे ही हानि होगी और ये अपने आप गुस्सा होना बंद हुआ। और मैंने ये देखा बाद में कि जितनी भी मीटिंग होती थी लोग उसे 5 मिनट पहले आके बैठ जाते थे और मीटिंग जल्द से जल्द खत्म हो जाती थी, समस्या का निवारण अपने आप हो जाता था। और बाद में फिर मैंने हमारे ऑफिस में भी ये ज्ञान का एक कोर्स किया, कई कोर्स किए और ये देखा कि ऑफिस में भी जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं तो जिस टाइप की ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो नहीं होती और काम अपने आप बहुत सुदृढ़ तरीके अच्छे तरह से चलता है। तो ये मेरा एक अपना अनुभव है और मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि भगवान शिव कल्याणकारी हैं और शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शुभ भावना के गुणों को हम सबके मन में फैलाते हैं और राजयोग से आत्मा परमात्मा के गुणों से भरपूर हो जाती है।